ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं। वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आज पशु राहत और पुनर्वास केंद्र वंतारा जाएंगे। इसके बाद वे सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे। श्री मोदी सासन जाएंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कल गिर नेशनल पार्क में सफारी सवारी करेंगे और सासन गिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बोर्ड वन्य जीव और वनों के संरक्षण तथा विकास के संवर्धन के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिन की केरल यात्रा पर रहेंगे। वे तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित 4थे पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान माला में व्याख्यान देंगे। उपराष्ट्रपति आज ही तेलंगाना भी जाएंगे। वे वहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में हिमस्खलन प्रभावित सीमा सड़क संगठन के शिविर से 51 श्रमिकों को बाहर निकाला गया है। इनमें से 4 श्रमिकों की कल इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आकाशवाणी से बातचीत में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि बर्फ में फंसे बाकी 4 मजदूरों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान जारी है।
4 लोग अभी भी खोज रहे हैं हम लोग। 6 से 7 फीट बर्फ वहाँ है, इसके बावजूद वहाँ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उसके लिए दिल्ली से GPR मंगाया गया है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार होता है वो लगाया गया है, और उसके साथ विक्टिम लोकेशन कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी आज भेजा गया है।
माणा और बद्रीनाथ में शुक्रवार सुबह हिमस्खलन से सीमा सड़क संगठन शिविर के 55 मजदूर बर्फ में दब गए थे। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल की भारी बर्फबारी के मद्देनजर पर्यटकों से अगले 3 दिन तक औली और हर्षिल न जाने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह पूरे राज्य में आमतौर पर मौसम साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली में 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रदूषण रोधी कई उपायों की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का अर्थ ये नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी है या मतदाता बोगस है। आयोग ने एक बयान में ये बात कही। इससे पहले मीडिया की खबरों में 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठा था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसा अन्य ब्यौरा अलग होता है। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची में नामांकित है, वहां वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है। इसके अलावा मतदाता कहीं और वोट नहीं डाल सकता। देश का कुल वस्तु और सेवा कर GST संग्रह इस वर्ष फरवरी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया है। फरवरी में लगातार 12वें महीने 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक का GST संग्रह हुआ। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय GST से 35,204 करोड़ रुपए, राज्य GST से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत GST से 90,870 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। पूरे देश में रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग कल रात मस्जिदों में विशेष नमाज तरावी अदा करने पहुंचे। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और महीने के अंत में ईद उल फित्र मनाई जाती है। खाड़ी देशों में आज पवित्र माह रमजान का 2रा रोजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये महीना समाज में शांति और सद्भाव लाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। इस मैच के विजेता टीम मंगलवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, वहीं हारने वाली टीम का मुकाबला बुधवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।